नमस्कार भारत, तारीख 12 अगस्त, दिन सोमवार, मैं हूँ मानसी दाश। 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आज मनाई जा रही है ईद। कैसी है वहाँ तैयारियाँ?
ईद 12 को है तो उसमें 13, 14 और 15 अगस्त को यौम आजादी का दिन है। हुकूमत काफी चौकसी बरत रही है और किसी तरह का कोई लूप होल नहीं छोड़ा जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये पाबंदियां और ये बंदिशें जो है इतनी ज्यादा जो है सख्त नवीयत की है।
बाढ़ के कारण देश के 5 राज्यों में कई जिलों में स्थिति गंभीर।
वायनाड में ज्यादातर जितने भी यहाँ पे मौत हुए हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से हुए हैं। हमने उनके अभी भी 8 लोग वहाँ पे दबे हुए हैं लैंडस्लाइड के अंदर।
5 जिले जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो कोल्हापुर और सांगली, इन दोनों जिलों की है।
सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में बकरीद से ठीक पहले एक बार फिर कर्फ्यू का पहरा सख्त कर लिया गया है। बीते 2 दिनों में कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा सख्ती से लागू कर दिया गया है और इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रूस की सरकारी संचार नियामक संस्था ने गूगल पर आरोप लगाया है कि वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। संस्था ने गूगल को ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गूगल इन प्रदर्शनों को यूट्यूब पर दिखाना जारी रखता है तो रूस इसे अपने संप्रभु मामलों में हस्तक्षेप की तरह देखेगा। शनिवार को मॉस्को में 10,000 लोगों ने एक सरकार विरोधी रैली में हिस्सा लिया था। हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थकों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई हैं। वांचाई जिले में पेट्रोल बम के इस्तेमाल की भी खबर है। वहीं दंगारोधी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक आमने सामने के एक बड़े संघर्ष के बजाय प्रदर्शनकारियों ने नई रणनीति अपनाई है और अब वे अलग अलग जगहों पर छोटे समूहों में अपने प्रदर्शन को अंजाम देते हैं और पुलिस के पहुँचने तक भाग जाते हैं। यह हांगकांग में लगातार 10वां सप्ताहांत प्रदर्शन था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने अपने भाई गोताबाया राजपक्षे को अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। वो इस साल होने वाले चुनाव में श्रीलंका पोडुजना पेरामुना पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार होंगे। गोताबाया अपने भाई की सरकार में एक शक्तिशाली रक्षा नौकरशाह थे। उसी सरकार के समय तमिल टाइगर्स के विद्रोहियों को श्रीलंकाई सेना ने हराया था। इस दौरान गोताबाया पर भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे थे, जिन्हें वे खारिज करते हैं। अपने राष्ट्रपति अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने आतंकवाद से लड़ने का प्रण किया और कहा, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता देश में पूर्ण सुरक्षा स्थापित करना होगा। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि हम इस देश को फिर से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाएंगे। मैं आपके बच्चों और प्रियजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। ये थे श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार गोताबाया राजपक्षे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजीली राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा है कि उनके देश को पर्यावरण की बेहतरी के लिए जर्मनी से सहायता की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जर्मनी की पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि वो अमेजॉन में जंगल काटे जाने की चिंताओं के चलते $40 मिलियन की मदद रोक देंगी। जर्मनी ब्राज़ील को जंगलों और जैव विविधता की बेहतरी के लिए दशकों से आर्थिक मदद देता रहा है। ब्राज़ीलिया में पत्रकारों से बात करते हुए बोल्सोनारो ने कहा कि जर्मनी अमेजॉन को खरीदना चाहता है। ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मुकाबला पूर्व प्रथम महिला और मध्यमार्गी वामपंथी विचार की नेता सेंट्रा टॉरेज और दक्षिणपंथी वामोस दल के पूर्व कारागार मंत्री एलेजांद्रो गियाममतेई के बीच है। लोगों ने असुरक्षा को अपने सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा बताया है। एक वोटर मतियास सांसेज ने कहा, आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना होगा क्योंकि एक उम्मीदवार है जिसने सड़कों पर सेना उतारने का प्रस्ताव दिया है और ये ग्वाटेमाला के लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे सुरक्षा बढ़ेगी। ये थे ग्वाटेमाला के एक वोटर के शब्द। नॉर्वे पुलिस ने कहा है कि शनिवार को ओस्लो में एक मस्जिद में हुई गोलीबारी नॉर्वे की पृष्ठभूमि वाले एक नौजवान ने की थी, जो संभवतः धुर दक्षिणपंथी विचारों से प्रभावित था। पुलिस के मुताबिक उसने एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। हमले में एक श्रद्धालु घायल हो गया था। हथियारों से लैस संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्थानीय मीडिया में दावा किया गया है कि संदिग्ध पहले भी इंटरनेट पर इस तरह की गोलीबारी की प्रशंसा कर चुका है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पूरे भारत प्रशासित कश्मीर और खासकर घाटी की स्थिति पर पूरे देश और दुनिया की नज़र है। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आज पहली ईद है। कश्मीर में बीते कई दिनों से संचार सेवाएं बंद हैं और कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन ईद के मद्देनज़र प्रशासन ने बीते दिनों कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी थी। लेकिन दो दिन की ढील के बाद ईद के ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को श्रीनगर में कर्फ्यू को पहले की तरह सख्ती से लागू कर दिया गया है। सड़कों पर पहले की तरह फिर बैरिकेड वापस आ गए हैं। सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में ईद और कर्फ्यू में ढील देने के बारे में क्या कहा।
जिस तरह के सामान्य हालात अब की बार हैं, इस वर्ष हैं, इस तरह कई बार पिछले वर्षों में देखने को नहीं मिले थे। मोटे तौर पर देखा जाए तो परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य है। एक भी कोई ऐसी सूचना रिपोर्ट किसी प्रतिकूल वारदात की या कोई नाखुशगवार वारदात की नहीं आई है। श्रीनगर में अब धीरे धीरे ईद के मद्देनजर कर्फ्यू रिलैक्सेशन की भी योजना बनाई जा रही है।
घाटी में मौजूदा सूरत हाल क्या है और यहाँ ईद की क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर ने कल शाम श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की। सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी।
जी देखिए, आज हुकूमत ने ईद का हवाला देकर कहा था कि रेस्ट्रिक्शंस को ईज किया जाएगा और बेशतर इलाकों में ईज भी किया गया। कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम हमने देखा और ज्यादातर शॉपिंग तो नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन जरूरी अशिया की खरीदारी जरूर कर रहे थे। उसमें बेकरी, खाने पीने की चीजें और खास तौर से जो सबसे बड़ी मंडी लगती है, हालांकि वहां पिछले साल जैसा रश नहीं था, लेकिन लोग भेड़ जो है या बकरे कुर्बानी के लिए खरीद रहे थे। तो लेकिन दोपहर को यानी 12 बजे के बाद से अचानक से हर जगह, हर शाहरा और हर सड़क पे बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया और दोबारा से वही रेस्ट्रिक्शंस का माहौल है। लेकिन चूंकि पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहीं कुछ वाकया हुआ है कि उस खदशे से किया है या क्या हुआ है, इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही है। क्योंकि हुकूमत का मुसलसल इसरार ये है कि हालात बिल्कुल काबू में है और पुरअमन है।
रियाज, ये बताइए कि जो ईद की नमाज़ है, किन किन इलाकों में उसकी इजाज़त दी गई है, क्या सारी बड़ी मस्जिद में भी उसकी इजाज़त होगी?
जी देखें, तारीखी तौर पर तो जो यहाँ की तारीखी जामा मस्जिद है वहाँ पे सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, और उसके बाद अगर वहाँ नहीं होता है तो ईदगाह में होता है या बड़े ग्राउंड्स में होता है। जिलों में, जिली सतह पे अनंतनाग, पुलवामा, शोपियन, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा वगैरह में, बड़गाम में, बड़े बड़े मैदानों में, बड़े बड़े ईदगाहों में। लेकिन ऐसा कुछ सरकारी अहलकारों ने अनऑफिशियली मुझे ये बताया कि बड़े ईदगाहों में बड़े इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बेशक मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर जो है नमाज पढ़ने की इजाजत होगी मस्जिद में, लेकिन उसके बाद खर्चा ये रहता है कि अगर 500 लोग हों तो वो नमाज के बाद जो है प्रोसेशन की सूरत में निकलते हैं, मुजाहिरों का खर्चा रहता है, इसलिए डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी।
जैसा कि आपने कहा कि आज सिचुएशन थोड़ा सा इसमें ईज और एक हल्की सी नरमी लग रही है, लोग निकले भी हुए हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत से भी कुछ अंदाजा हो रहा है कि उन्हें भी खदशात हैं या वो क्या सोच रहे हैं, कुछ उनकी बातचीत से क्या पता चल रहा है?
कि देखें, लोगों में तो खदशा दिन ब दिन बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेड है, किसी को कुछ पता नहीं है, लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं जानते हैं। मैं ललदेत हॉस्पिटल में था, वहाँ एक शहरी से मेरी बात हुई जिसकी बेटी हुई है, 4-5 दिन पहले वो एडमिट हुई थी, लेकिन वो बेटी होने की खुशखबरी कह रहा था कि अपने वालदैन को या घर वालों को नहीं दे सका है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपने वालदैन से बात करने के लिए जो हज पे चले गए हैं, दिल्ली जाते हैं फ्लाइट लेकर, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से बात करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, ऐसी भी मिसालें हैं। और इसके साथ साथ अब दूसरा बड़ा मसला ये है कि अलहदगी पसंद तो बंद थे ही, लेकिन अब जितने भी यहाँ पे हिंद नवाज सियासी जमातों के बड़े या छोटे लीडर हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, उनमें से बेशतर को बाहर भेज दिया गया है। मैं आज ही वहाँ SKICC के बाहर था तो वहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर इमामत सागर की फैमिली बाहर बैठी थी, दवाइयाँ और खाना लेकर उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो कई लोग जो हैं, मतलब अब दिलचस्पी की बात यह है कि जिस SKICC होटल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती थी उसको आज सब जेल करार दिया गया है, उन्हें ईद से पहले या ईद के मौके पर रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा।
तो सरकार की तरफ से कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कहीं से, कोई किसी तरफ से के ये पता चले कि इसमें कुछ सूरत हाल में क्या ईद के बाद कुछ तब्दीली आने के आसार हैं?
ऑफिशियली तो कुछ बताया नहीं जा जाता है, लेकिन ये है कि हमने जब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सईद सहरी असगर से बात की, क्योंकि वो हुकूमत की तर्जमान है, तो उन्होंने कहा क्योंकि ईद के इस्तेमाल जो है वो हमेशा यहाँ, चाहे हालात ठीक भी हों तो एक लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज होते हैं, तो जाहिर है इस बार तो बहुत बड़ा फैसला हुआ है, इसमें हुकूमत को भी एक्सपेक्टेशन था कि कुछ होगा, इसलिए ईद करने के बाद चूंकि ये कोइंसाइड हो रहा है, ईद 12 को है तो उसमें 13, 14 और 15, 15 अगस्त को ही हमें आज़ादी का दिन है, तो इस तरह से उनमें लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट का खदशा रहता है, तो इस बार ये खदशात जो है वो कई गुना ज्यादा उनमें इजाफा हो गया है, क्योंकि इसी तरह का बैकड्रॉप है, पस मंजर आप जानते हैं कि क्या हुआ है, किन हालात में हुआ है, लोग सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं, खौफ और इज़्तिराब की लहर है, और कुर्बानी के लिए भेड़ बकरे जो सब घरों में मौजूद है उन्हें वो फरीजा भी अंजाम देना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये हुकूमत उसके लिए काफी चौकसी बरत रही है और किसी तरह का कोई लूप होल नहीं छोड़ा जा रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये पाबंदियां और ये बंदिशें जो है इतनी ज्यादा जो है सख्त नवीयत की है।
जम्मू कश्मीर में क्या है ताज़ा हाल, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
लगातार बारिश के कारण भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, साथ में गोवा में बाढ़ की स्थिति है। यहां राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। केरल में भूस्खलन के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को यहां दौरा कर राहत कैंप में लोगों से मुलाकात की और मल्लापुरम में जिलाधिकारी के दफ्तर में अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
Just had a meeting here and we went into the details of the rescue operation. The general sense is that the operation is...
राहुल गांधी ने कहा कि हमने बाढ़ के हालात पर चर्चा की और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। मैं मानता हूं कि राहत कार्य ठीक से चल रहा है। मैं वहां गया जहां भूस्खलन हुआ था, वहां अब भी शव खोजे जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि वो तेजी से काम करें। मैं राहत शिविर में भी गया जहां लोगों ने दवाओं और सड़क संपर्क बहाल करने के लिए मदद की गुहार की। इसके बारे में राज्य सरकार को बताया गया है। मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की और उनसे गुजारिश की कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार की मदद करे। राहुल गांधी का कहना है कि अभी कुछ दिनों के लिए वो वायनाड में रहकर राहत शिविरों का दौरा करेंगे। केरल में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान दिया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन बाढ़ के कारण अब भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गुजरात में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। इन राज्यों में जमीनी हालात क्या हैं, सुनिए हमारे सहयोगी संदीप राय की रिपोर्ट।
அப்புறம் விடிய விடிய எல்லாம் மரமெல்லாம் அடுத்து மாத்தினாங்க, மழையெல்லாம் இடிஞ்சதெல்லாம் அவங்களால.
ये है केरल के मेपडी राहत कैंप में मौजूद अंबिका। वो बता रही हैं कि भूस्खलन में उनके माता पिता की मौत हो गई, उन्हें किसी तरह बचाकर राहत कैंप तक पहुंचाया गया। अभी भी वहां 8 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। पिछले साल की भीषण बाढ़ के बाद इस साल भी केरल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। भूस्खलन के कारण इस बार सर्वाधिक जाने गई हैं। वायनाड सबसे अधिक प्रभावित इलाका रहा है, जहां रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे। केरल में करीब 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता दीप्ति बथिनी कहती हैं,
वायनाड में ज्यादातर जितने भी यहां पे मौत हुए हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से हुए हैं। हमने उनके अभी भी 8 लोग वहां पे दबे हुए हैं लैंडस्लाइड के अंदर, उनको निकालने की कोशिश, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि वायनाड में जो रोड्स की परिस्थिति है वहां पे पूरा रोड्स ये लैंडस्लाइड्स होने की वजह से या फ्लड वाटर आने की वजह से रोड्स काफी बंद हो चुकी है।
महाराष्ट्र में बाढ़ से 5 जिले प्रभावित हैं, जिनमें कोल्हापुर और सांगली सबसे गंभीर स्थिति में है। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते इन इलाकों में बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात पटरी पर लौटेंगे। महाराष्ट्र में मौजूद हमारे सहयोगी मयूरेश कन्नूर ने बताया,
5 जिले जो है वो बुरी तरह से प्रभावित है और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो कोल्हापुर और सांगली इन दोनों जिलों की है। अब के ताजे अगर सरकारी आंकड़े हम देखें तो करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,41,000 लोगों को इन 5 जिलों से, इसमें से ज्यादा कोल्हापुर और सांगली के हैं, इतने लोगों को उनके घर से निकाला गया है। एक शिरोल नाम का एरिया है कोल्हापुर जिले में, वहां पे कुछ भी कोई पहुंचा नहीं था, 1,00,000 लोग करीब पहुंचे थे, तो आज वहां पे उनकी तरफ मदद पहुंची है ऐसा पता चला है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि सोलापुर या सांगली हो, दोनों में से करीब 1 से 1.5 फीट पानी अब नीचे चला गया है।
लेकिन ये हालात सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं है बल्कि गुजरात और दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कर्नाटक की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बारिश कम हुई है लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने में काफी वक्त लग सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का हवाई सर्वे किया है और राज्य सरकार ने केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज जारी करने की मांग की है। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने बताया,
मरने वालों की संख्या अभी 40 हो गई है कर्नाटका में और करीब 5,80,000 से भी ज्यादा लोगों को निकाला गया है और इनमें से करीब 3,25,000 लोगों को राहत शिविरों में शरण दिया गया है। राहत की खबर ये है कि बारिश थोड़ा कम हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में और उत्तर कर्नाटका के जिले जैसे बेलगावी, बागलकोट, तो वहां जब पानी कम होता है, बारिश कम होता है, तो जाहिर है कि हैदराबाद, कर्नाटका के गुलबर्गा, यादगिरी जैसे जिलों में बाढ़ भी कम हो जाएगा, शायद आज कल में नॉर्मल से जाएगी।
गुजरात के हालात में रविवार को कुछ सुधार हुआ क्योंकि बारिश थमी है लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है और राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। अहमदाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा का कहना है कि सोमवार तक हालात में काफी कुछ सुधार होने की संभावना है।
हाँ जी, गुजरात में रविवार के दिन बारिश बहुत ज्यादा हुई नहीं और जो सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में कहीं कहीं बारिश हुई लेकिन जो पानी की आवक थी, जो वाटर लॉगिंग था, वो वाटर लॉगिंग बहुत सारे इलाकों में पानी अभी कम हुआ है और एनडीआरएफ और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चालू है। कच्छ में से आज कुछ लोगों को वहां से बचाया गया एनडीआरएफ की एक टीम के द्वारा, लेकिन ओवरऑल जो गुजरात में फिलहाल जो फ्लड की कंडीशन है उसमें अभी इम्प्रूवमेंट है और लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ रहा है।
बहरहाल बारिश में जनधन की तबाही हर साल का एक नियम सा बन गई है। हालात से निपटने और सही समय पर अलर्ट जारी करने की सही व्यवस्था न होने के कारण हर साल जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब लोगों की उम्मीद मानसून के कमजोर होने पर टिकी है जब स्थिति में सुधार होगा। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
बाढ़ के कारण भारत के 5 राज्य प्रभावित, रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप राय। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है। कुलदीप, आप हमारे साथ अखबारों के अखबार लेकर स्टूडियो में आ गए हैं, क्या है आज अखबारों के पहले?
देखिए मानसी, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर कश्मीर सबसे बड़ी खबर है और ये इंडियन एक्सप्रेस इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें एक तस्वीर छपी है एक दरवाजे पर लगे ताले की। ये दरवाज़ा श्रीनगर की जामा मस्जिद का है और आज बकरीद का त्यौहार है तो आज ये ताला खुलेगा। कई अखबारों ने लिखा है कि आज ख़रीदारी में कुछ ढील रहेगी, लोग मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ सकेंगे। लेकिन कुछ अलग अलग अखबारों के अलग अलग दावे भी हैं। कुछ अखबार कह रहे हैं कि पाबंदियां सख्त हुई हैं, हमें रियाज मसरूर हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कल 12 बजे के बाद से कर्फ्यू में और सख्त पहरा लगा दिया गया है। कुछ अखबार कह रहे हैं कि कुछ ढील आई हैं, लेकिन द हिंदू अखबार ने शीर्षक दिया है रिस्ट्रिक्शंस रिटर्न टू वैली, यानी घाटी में पाबंदियां लौट आई हैं, जबकि दैनिक जागरण लिख रहा है बकरीद से पहले पाबंदियों में राहत। तो ये दो तरह के दावे अखबारों में हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कश्मीर जो बंद पड़ा था उसमें कुछ ढील दी गई है लेकिन श्रीनगर शहर में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है, रियाज मसरूर भी यही कह रहे थे। अखबार ने लिखा है कि श्रीनगर के जिलाधिकारी ने इमाम से मुलाकात की है, प्रशासन ने 300 फोन बूथों की सूची जारी की है। एक खबर और इसी से जुड़ी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में ही कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को हिरासत में ले लिया गया है। उनकी पत्नी का बयान अखबार ने छापा है जिसमें वो कह रही हैं कि अब उन्हें अपने भविष्य के कदमों को लेकर थोड़ा सख्ती से सोचना होगा। तो सज्जाद लोन विधानसभा चुनावों के बाद से जम्मू कश्मीर में भाजपा के सहयोगी की भूमिका में थे और अब उनको एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि स्थानीय मस्जिदों में लोग नमाज तो पढ़ सकेंगे आज, लेकिन बड़े जुटान की इजाज़त नहीं है और नमाज के ठीक बाद धारा 144 फिर से पूरी सख्ती से लागू कर दी जाएगी। अखबार ने यह भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर फोन पर बात करने के लिए लोगों को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो जिन मुश्किल हालात में वो रह रहे हैं, अभी ये भी लिखा है कि पहले प्रशासन के हेल्पलाइन का जो केंद्र है वहां से उन्हें एक नंबर लेना पड़ता है, उस नंबर की एक चिट लेकर के उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, तब उन्हें फोन पर बात करने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि रविवार को भी कुछ बैंक और ATM खुले रहे रविवार होने के बावजूद, और आज के लिए मस्जिदों पर नमाज के खास इंतजाम किए गए हैं। उधर सभी अखबारों में ये खबर भी पहले पन्ने पर है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग में आज अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात करेंगे, जब कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। चीन जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर एतराज़ जता चुका है, और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आज की मुलाकात में अगर चीनी पक्ष की ओर से ये मसला उठाया जाता है तो भारत इस पर यही कहेगा कि ये भारत का अंदरूनी मसला है।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद कुलदीप मिश्र। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। हांगकांग के वांचाई जिले में गणतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं, और दंगारोधी पुलिस दस्ते पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम और ईंटें फेंकी हैं। इधर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और उन पर लाठीचार्ज किया है। इन झड़पों में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने के अपने तरीके को भी बदला है और पुलिस के साथ एक तरह की आंख मिचोली कर रहे हैं। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कुलदीप मिश्र से ही।
ये आवाजें हैं हांगकांग के वांचाई के शाम शुईपो शहर की। यहां लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक जुलूस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। वांचाई शहर के विक्टोरिया पार्क में शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन हालात उस वक्त बिगड़ गए जब रैली में शामिल लोग आसपास की सड़कों पर जाने लगे। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ साथ रबर की गोलियां चलाने की भी खबरें मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। हांगकांग में मौजूद BBC संवाददाता स्टीफन मैकडोनल का कहना है कि हाल के वक्त में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एक जगह पर विरोध जताते देखे जाते थे, लेकिन अब प्रदर्शनकारी नए तरीके अपना रहे हैं और वो एक जगह पर एकत्र होकर प्रदर्शन करने की बजाय छोटे छोटे दलों में बंटकर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यातायात को बाधित कर रहे हैं, रास्तों को बंद कर रहे हैं और दीवारों पर चित्र भी बना रहे हैं, और आसपास पुलिस को देखते ही वो भाग खड़े होते हैं। एक प्रदर्शनकारी कहती हैं, ये महिला प्रदर्शनकारी कह रही थी कि वैसे ये तरीका कोई खास बेहतर नहीं है, लेकिन उन्हें फिलहाल इससे बेहतर कुछ नहीं सूझ रहा। एक और महिला प्रदर्शनकारी का कहना है, अगर हम सड़कों पर नहीं उतरे तो सरकार और पुलिस को ये संदेश मिलेगा कि हम उनसे डरते हैं। हम उनसे ये कहने आए हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा, और ऐसा करके वो लोगों को अपने खिलाफ और भड़का रहे हैं। ये थे हांगकांग की एक प्रदर्शनकारी के शब्द। जून से लेकर अब तक हांगकांग पुलिस 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले चुकी है। प्रदर्शनकारी इनग्रिड वॉन विक्टोरिया पार्क में मौजूद थे। उनका कहना है कि प्रदर्शन के इस नए तरीके से हिरासत में लिए जाने से बचना आसान है। मुझे लगता है कि पुलिस को पहले से ही पता होता है कि प्रदर्शनकारी क्या करने वाले हैं, इसलिए हमारे व्यवहार के तरीके को हमने बदला है, क्योंकि बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा था। मुझे लगता है कि इस तरह छोटे छोटे दलों में आकर विरोध जताना और फिर काम पूरा हो जाने पर चले जाना अच्छा तरीका है। इसका कोई मतलब नहीं है कि पुलिस आपको बार बार गिरफ्तार करे और आप अकारण ही किसी बेकसूर की जान की कुर्बानी दें। ये थे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी के शब्द। हांगकांग में बीते करीब 2.5 महीनों से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। यहां लोग विवादित प्रत्यर्पण बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल के तहत हांगकांग के किसी अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता था। जुलाई में हांगकांग की नेता कैरी लैम ने कहा कि उस विवादास्पद बिल का अब अंत हो चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिल को पूरी तरह वापस लिया जाए और उन लोगों को रिहा किया जाए जिन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी कैरी लैम के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि प्रदर्शनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की विस्तृत जाँच हो।
हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, रिपोर्ट सुना रहे थे कुलदीप मिश्र। और कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से करारी मात दी। वेस्टइंडीज के सामने बारिश के बाद जीत के लिए 46 ओवर में संशोधित 270 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 42 ओवर में 210 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के इवान लेविस ने 65 और निकल्स पूरन ने 42 रन बनाए। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 31 रन देकर 4 विकेट झटके। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली के 42वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक के सहारे निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 279 रन बनाए। विराट कोहली ने 120 और श्रेयस अय्यर ने 71 रन बनाए। और अब समीक्षा। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC 2020 विश्व कप के लिए खिलाड़ियों की तलाश के पहले इम्तिहान में कितना कामयाब हुआ भारत?
हमारे पास 25 या 26 गेम है T20 वर्ल्ड कप आने से पहले, और यही फोकस रहेगा अगले साल तक की जितने मैचेस हैं उनमें अपनी बेस्ट 15 अपनी बेस्ट 11 फिगर आउट करें।
ये कहना है भारत के कप्तान विराट कोहली का। हालांकि उनका ये कहना वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खेली गई 3 मैचों की 2020 सीरीज से पहले का है, जिसे भारत ने एक तरफा 3-0 से अपने नाम किया। कहने को वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे छोटे स्वरूप में चैंपियन है और अगले साल उसके सामने खिताब बचाने की चुनौती होगी, लेकिन बीती सीरीज में तो उसने भारत के सामने जैसे घुटने ही टेक दिए। और सबसे बड़ी बात, भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई युवा खिलाड़ियों ने। इनमें सबसे पहला नाम है तेज गेंदबाज नवदीप अमरजीत सैनी का। उन्होंने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 3 विकेट झटके। कमाल की बात है कि वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। ये तो सोने पर सुहागे जैसी बात रही नवदीप सैनी के लिए।
जैसे ही पहला विकेट मिला तब जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था, कि जो एक प्रेशर था कि खेलने का कि डेब्यू है आज, तो एक तो वो रिलीज हो गया। उसके बाद सेकंड विकेट मिला तब ऐसा हो गया था कि जैसे नॉर्मल मैच खेल रहा हूँ मैं।
नवदीप सैनी के बाद खब्बू ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने भी सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में मिले मौके का फायदा दोनों हाथों से उठाया। दूसरे मुकाबले में तो उन्होंने नाबाद 20 रन बनाए, साथ ही 2 विकेट भी झटके। इसका इनाम उन्हें मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। वैसे वो 14 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। इत्तेफाक से उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 2020 मुकाबला पिछले साल वेस्टइंडीज के ही खिलाफ खेला था। कृणाल पांड्या के पास अनुभव की कोई कमी नहीं।
सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट करना। द अमाउंट ऑफ प्रेशर यू आर इन व्हेन यू आर प्लेइंग IPL इंडिया इट वाज बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड इंग्लैंड तीनों जगह खेल चुका हूँ, और वो चीज़ों का एडवांटेज भी रहता है कि जब अगर आप मेन टीम के साथ जब जाते हो सीनियर टीम के साथ तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है।
अनुभव की कमी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास भी नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा मौके शायद ही किसी ने गंवाए होंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे मैच में नाबाद 65 रन बनाकर उन्होंने खुद राहत की सांस ली।
मेरे को लगता है कि काफी टाइम से जो मेरी प्रोसेस है मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ठीक है, स्कोर नहीं हो रहा था, बट मैं अपनी प्रोसेस पे फोकस करके और अपने आप पे ट्रस्ट करके वही चीज कंटिन्यू कर रहा था और रिजल्ट आया थोड़ा सा।
तीसरे मुकाबले में ही तेज गेंदबाज दीपक चहर ने तो कहर बरपाते हुए केवल 4 रन देकर 3 विकेट झटके, और इन खिलाड़ियों के खेल से संतुष्ट दिखे क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली भी।
एक जमाना ऐसा था कि प्लेयर्स की कोशिश ये होती थी कि घर पे डेब्यू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज के जो खिलाड़ी हैं वो इतने मैच्योर हो जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, थोड़ा बहुत IPL खेल के, जो यंगस्टर्स ने अपनी जगह बनाई है, जो उम्मीद जगाई है, और जो विराट कोहली कहते आ रहे हैं कि हमारा भारत का टैलेंट पूल बहुत स्ट्रांग है, वो उभर के आया इस सीरीज में।
वहीं हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल पुरुष एकल वर्ग का खिताब 7वीं वरीयता हासिल भारत के सौरभ वर्मा ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने सिंगापुर के लोहकिन यू को 21-13 14-21 21-16 से हराया। उधर म्यांमार में आयोजित U23 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल चीन ताइपे ने भारत को 3-1 से मात दी। वहीं भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट मेदवेद टूर्नामेंट के फाइनल में रूस की एन मलिशेवा से अंकों के आधार पर 10-0 से हार गई। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में बकरीद से ठीक पहले एक बार फिर कर्फ्यू का पहरा सख्त कर लिया गया है। रूस की सरकारी संचार नियामक संस्था ने गूगल पर आरोप लगाया है कि वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थकों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। फिलहाल मानसी राज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।